हरे कृष्णा,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारि। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारि। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन चढ़ी, यमुना तीरा बन चढ़ी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारि। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारि। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बन चढ़ी, यमुना तीरा बन चढ़ी। परमहंस परिव्राज गचारी अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविशिष्ट कॉन्फाउंडर आचार्य सेव दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सरकी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम आनंद है ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गोरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय प्रथम, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 43। सबने निकाल लिया। उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याण जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याण जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याण जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुश्रुम। शब्दार्थ बोलिए। उत्सन्न विनष्ट, कुलधर्माण पारिवारिक परंपरा वाले, मनुष्याण मनुष्यों का, जनार्दन हे कृष्ण नरके नरक में, नियतम सदैव वासः निवास भवती होता है, इति इस प्रकार अनुसुश्रुम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन फलदायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सुनवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए। श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं हे जनार्दन जिनके कुल धर्म का नाश हो गया है ऐसे मनुष्यों का नरक में वास होता है सदा निश्चित रूप से ऐसा हमने सुना है। अनुसुश्रुम का मतलब है परंपरा के द्वारा सुना है कि नरक की प्राप्ति होती है कुल धर्म का नाश होने से नरक की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा इति अनुसुश्रुम। अनु का मतलब पीछे पीछे, सुश्रुम का मतलब सुना है ना। तो जो बात हम बोले हैं उसको हमें पहले सुनना चाहिए है ना। ऐसे नहीं है कि बोलते जा रहे हैं और कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं है। आधार होना चाहिए क्या परंपरा के आधार पर बोलना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। क्या विधि है आचार्यों की परंपरा जो भगवान कृष्ण से शुरू हुई वो परंपरा प्रामाणिक है। प्रभुपाद लिखते हैं जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब जो मेरा लेख भगवत दर्शन में छपा था ये भाग 37 है। श्री भगवान ने कहा इसमें पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष कुल विनाश से होने वाले आठवें तथा अंतिम दोष का वर्णन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दोष है और वास्तविक भी है क्योंकि इसमें क्या होता है नरक की प्राप्ति है ना। असली दोष तो यही है। श्लोक संख्या 40 से लेकर इस श्लोक तक यानी 43 कितने श्लोक हुए 40 से लेकर के 43 तक 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों में अर्जुन ने जिन 8 दोषों का क्रम से वर्णन किया है वे इस प्रकार हैं। पहला क्या है कुल विनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा कुल धर्म के नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाता है। फिर तीसरा अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और चौथा स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। और पांचवा अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल घातियों तथा कुल के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। छठवां, नारकीय जीवन के कारण पितरों की पिंड क्रिया और जल क्रिया बंद होने से उनका पतन हो जाता है। सातवां, इस प्रकार के दुष्कर्मों से जाति धर्म तथा कुल धर्म का पूर्णतया लोप हो जाता है। और आठवां, इस प्रकार कुल धर्म के लुप्त होने से मनुष्यों को निश्चित रूप से नरक में निवास करना पड़ता है। तो यहां पर इस श्लोक में वर्णित आठवें दोष की हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में दो शब्द ऐसे हैं जिनका एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। देखिए इस श्लोक की पहली पंक्ति, पहला है कुल धर्माणाम और दूसरा मनुष्याणाम। प्रत्येक मानव समाज में मनुष्य की चेतना को शुद्ध करने के लिए कुछ सामाजिक तथा पारिवारिक नियम होते हैं जिनका पालन करने से मनुष्य के जीवन का लाभ प्राप्त होता है तथा जिनका पालन नहीं करने से व्यक्ति को मनुष्य जीवन का अवसर फिर से नहीं प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपने मानव समाज में श्रेष्ठ नियमों को भंग करता है तो उसे नरकों में विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं नरके नियतम वासो भवती तेनु सुश्रुमे, अर्थात वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं, ऐसा हमने गुरु परंपरा से सुना है। वास्तव में नरक के विषय में जानकारी हमें या तो शास्त्रों के द्वारा अथवा गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होती है, अन्यथा बहुत से लोग नरक के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नरक के विषय में ज्ञान प्राप्त हो चुका है परंतु उनकी इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, अर्थात वे अश्रद्धालु हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नरक के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ है परंतु उनकी इस ज्ञान में श्रद्धा भी है और श्रद्धा नहीं भी है। ऐसे लोगों को संशय आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार से जो लोग गुरु परंपरा को स्वीकार नहीं करते वे या तो अज्ञानी हैं या अश्रद्धालु हैं और या फिर संशय आत्मा है। अज्ञानी का मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है? और फिर किसी को पता है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धालु है, और किसी व्यक्ति को पता है और श्रद्धा भी है और श्रद्धा नहीं भी है तो वो क्या है? संशय आत्मा। तीन प्रकार के हैं। गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानी अश्रद्धालु तथा संशय आत्मा ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु संशय आत्मा के लिए तो ना इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में सुख है। फिर इसी अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं अति तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। परंतु नरक के संबंध में अर्जुन के मन में कोई भी संशय नहीं है। यहां पर अर्जुन ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है अनुसुश्रुम। अनु का अर्थ है पीछे पीछे तथा सुश्रुम का अर्थ है सुना। इस प्रकार अनुसुश्रुम का अर्थ हुआ पीछे पीछे सुना अथवा उन लोगों से सुना जिन्होंने पहले से ही सुना था। इस प्रकार यदि श्रवण की परंपरा को देखा जाए तो पता चलेगा कि संपूर्ण ज्ञान देने वाले कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही है। अर्जुन ने इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण को जनार्दन नाम से संबोधित किया है। क्या कहा अर्जुन ने? जनार्दन, हे जनार्दन। तथा विष्णु सहस्त्र नाम के 139वें श्लोक में भी जनार्दन शब्द आता है जो इस प्रकार है योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वं जनार्दन। अर्थात योग ज्ञान सांख्य विद्याएं शिल्प आदि कर्म वेद शास्त्र और विज्ञान ये सब जनार्दन से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे पता चलता है कि हर प्रकार का ज्ञान जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण ही देने वाले हैं, और जिन लोगों ने जनार्दन से जिस ज्ञान का श्रवण किया है उनसे अन्यों ने श्रवण किया, इस प्रकार से प्रामाणिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहां पर अर्जुन का भाव है कि हे जनार्दन, आपसे चली आ रही शिष्य परंपरा के द्वारा ही मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि जो मनुष्य अपने कुल धर्म को नष्ट करते हैं वे नरक में जाते हैं। तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? परंतु यहां पर अर्जुन को विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण की योजना के अनुसार कुल तो नष्ट होगा परंतु कुल धर्म नष्ट नहीं होगा। जनार्दन शब्द का दूसरा अर्थ है वह पुरुष जिससे भक्तगण सभी प्रकार के कल्याण की याचना करते हैं। जन शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है भक्तों का समूह है, तथा अर्दन शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है याचना करना या प्रार्थना करना। इस प्रकार जनार्दन शब्द का प्रयोग करके अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे जनार्दन, आप तो अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, फिर ऐसा क्यों है कि आपके होते हुए मेरा संपूर्ण कुल नरक में जाए? यहां पर अर्जुन को विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण के शत्रु भी जब नरक में नहीं जाते हैं तो अर्जुन तथा उनके भाई कैसे नरक में जाएंगे। जनार्दन शब्द का तीसरा अर्थ है वह पुरुष जिसको भक्तगण कष्ट की स्थिति में सदा पुकारते हैं। जन शब्द का अर्थ यदि भक्तों का समूह है माना जाए तथा अर्दन शब्द का अर्थ कष्ट में पुकारना माना जाए तो जनार्दन शब्द का उपरोक्त अर्थ निकलता है। इस प्रकार जनार्दन शब्द का प्रयोग करके अर्जुन का भाव है कि हे जनार्दन, इस युद्ध के द्वारा मेरा संपूर्ण कुल नरक में जाएगा, आप ही रक्षा कीजिए, आपके सिवा हमारा नरक से उद्धार करने वाला कोई नहीं है। यहां पर एक बात और भी समझने योग्य है, अर्जुन के लिए ये अत्यंत कष्ट की बात है कि उनका संपूर्ण कुल नरक में जाएगा, इसलिए इस बात को कहने के पहले ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के जनार्दन नाम का उच्चारण किया है। अर्जुन कहते हैं उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम मासु भवती, अर्थात कुल धर्म का विनाश करने वाले मनुष्यों का हे जनार्दन नरक में निश्चित निवास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसीलिए उनके लिए ये स्वाभाविक है कि किसी भी कष्ट की स्थिति में वे कष्ट से छूटने के लिए कृष्ण को पुकारते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णित 28 नरकों का कुछ वर्णन करेंगे जिनके विषय में अर्जुन ने पहले से ही गुरु परंपरा के द्वारा सुन रखा है। समझे, श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, अर्जुन ने इन नरकों को सुना है गुरु परंपरा के द्वारा। पहला नरक कौन सा? तामिश्र नरक। पहला नरक है तामिश्र नरक। ये कौन लोग इस नरक में जाते हैं? जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी या धन को छीनता है उसे यमदूत रस्सी से बांधकर तामिश्र नरक में डालते हैं। अब यहां क्या यातना होती है? इसे वहां पर डांटा जाता है, भूखा पैसा रखा जाता है और पीटा जाता है। समझे, तामिश्र नरक। जैसे किसी को बंद कमरे में डाल दिया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, डांटा जाए और खाना पीना ना दिया जाए, तामिश्र नरक जो है ना ऐसा है, कितना कष्ट है। फिर दूसरा है अंध तामिश्र नरक। इसमें कौन जाते हैं? जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर उनकी स्त्रियों को भोगता है उसे अंध तामिश्र नरक में डाला जाता है। इसमें क्या यातना है? इतनी अधिक यातना दी जाती है कि उसकी आंखों के सामने अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अगर बहुत पीटा जाए ना किसी को तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो इतनी यातना हमेशा निरंतर रहती है कि आंखों के सामने अंधेरा ही रहता है, हमेशा आंखों के सामने प्रकाश उसको दिखाई पड़ता ही नहीं है। अंधता में नरक होता है। अब तीसरा नरक क्या है? रौरव। इसमें कौन जाते हैं? जो व्यक्ति अपने शरीर पत्नी और पुत्रों के पालन में लगा रहकर अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है उसे रौरव नरक में डाला जाता है। अब यहां यातना क्या होती है, कैसी यातना होती है रौरव नरक में? ये रौरव शब्द बना है रुरु से। रुरु सांप से भी ज्यादा भयानक कीड़ा होता है। जहां पर सर्प से भी अधिक क्रूर रुरु नाम के प्राणियों से काटते हैं, रौरव नरक कहलाता है। फिर चौथा नरक है महारौरव, इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी पीड़ा पहुंचाकर केवल अपने ही शरीर का पालन करता है उसे महारौरव नरक में डाला जाता है, जहां पर रुरु से भी अधिक भयानक महारुरु नाम के प्राणी उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं, बहुत भयानक है। फिर पांचवा नरक है कौन सा? कुंभी पाक। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति अपने स्वाद की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवित पशु तथा पक्षियों को भूनता है उसे यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं तथा उसे उबलते हुए तेल में भूनते हैं। कुंभी पाक, कुंभ, कुंभी बना है कुंभ से, बहुत बड़ा कुंभ है उसमें तेल उबल रहा है उसमें डालते हैं, कुंभी पाक नरक। छठवां नरक है काल सूत्र, इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है उसे काल सूत्र नामक नरक में रखा जाता है जिसकी परिधि 80,000 मील की है। 80,000 मील का जो है एक नरक है जो तांबे से बना हुआ है, तांबे की जमीन है, 80,000 मील, 80,000 मील में जो है तांबे की जमीन है और ऊपर से सूर्य के द्वारा गर्म होता है, वो तांबा है बहुत गर्म होता है, ऊपर से सूर्य के द्वारा और नीचे से अग्नि के द्वारा गर्म होता है। वो व्यक्ति भीतर की भूख प्यास से तथा ऊपर से सूर्य द्वारा और नीचे अग्नि से जलता हुआ कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है, बहुत कष्ट है। फिर सातवां नरक है असी पत्र वन, इसमें कौन ज्यादा है? जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांत को छोड़ता है उसे यमदूत असी पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं ना? अब होता क्या है, जब यमदूत कोड़ों से पीटते हैं तो वो भागता है, लेकिन वो असी पत्र वन एक ऐसा वन है जिसमें पत्ते तलवार जैसे होते हैं, तलवार के पत्ते होते हैं, तलवार के समान तीखे पत्ते होते हैं। जब भागता है तो क्या होता है, तलवार के समान तीखी पत्तियों से उसका पूरा शरीर छत विक्षत होता है और वो भयानक चीत्कार करता है। ये भागना पड़ता है, अगर ना भागे तो यमदूत मार रहे हैं पीछे से, और भाग रहा है तो पूरे शरीर में तलवार से जो है ना घाव हो रहे हैं क्योंकि वो पत्ते ही तलवार जैसे हैं। आठवां नरक है सूकर मुख, राज्य का जो अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है उसे यमदूत सूकर मुख नरक में गन्ने के समान कुचलते हैं। सूकर मुख मतलब सुअर जैसा मुंह उसके अंदर घुसेड़ देते हैं और दो बड़े बड़े पत्थर के पहिए हैं उनके नीचे उसको पीसा जाता है, गन्ने की तरह पीसा जाता है। उस समय वह बहुत अधिक चीत्कार करते हुए मूर्छित हो जाता है, लेकिन खासियत यह है कि वहां मरता नहीं कोई है? देखो उसका शरीर जो ना क्या पूरा खून हड्डी सब क्या होते हैं कुचल जाते हैं, कागज जैसा उसका पूरा शरीर हो जाता है, ये मरता नहीं है, कितना कष्ट है। ये कौन सा नरक है कौन सा नरक है ये? अभी मैंने बताया शुकर मुख, शुकर मुख। और कौन जाता है इस नरक में? राज्य के अधिकारी जो क्या करते हैं निर्दोष व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देते हैं, है ना? ब्राह्मण को यानी मतलब हरे कृष्ण वालों को भी जो है ना अगर दंड देते हैं, वो कीर्तन करते हैं सड़क में तो उनको जो है ना दंड देते हैं, तो इनको जो है ना सुकर्मुख नरक में जाना पड़ता है। फिर नवा नरक है अंधकूप, जो व्यक्ति अन्य पशुओं पक्षियों या कीड़ों की अनावश्यक हिंसा करता है उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है। अब यहां पर क्या यातना है, जहां अंधकार में ही वे पशु पक्षी और कीड़े उसे सताते हैं, इस प्रकार वह आराम नहीं कर पाता और निरंतर घूमता रहता है, बहुत कष्ट है। दसवां नरक है कृमि भोजन। कृमि भोजन इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति अतिथियों, वृद्धों और बच्चों को भोजन न बांटकर स्वयं ही खाता है उसे अत्यंत अपवित्र कृमि भोजन नरक में रखा जाता है। ये कैसा होता है नरक? 800,000 मील के विस्तार वाला एक कुंड है ये। कौन सा नरक? कृमि भोजन। 800,000 मील के विस्तार वाला एक कुंड है जो कीड़ों से भरा हुआ है। कीड़े ही कीड़े हैं। इस कुंड में वह कीड़ों को खाता है और कीड़े उसे काटते हैं। कितना अशुद्ध है ये नरक। 11वां नरक है संदंश। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति दूसरों का सोना या रत्न छीन लेता है उसे संदंश नरक में ले जाकर संदंशी और लोहे के गर्म पिंडों से उसकी खाल उतारी जाती है, उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। संदंश नरक है। 12वां नरक है तप्त सुरमी। इसमें कौन जाता है? विवाह के अतिरिक्त जो पुरुष पर स्त्री या जो स्त्री पर पुरुष से व्यभिचार करती है उसे तप्त सुरमी नरक में ले जाकर यमदूत उसे कोड़ों से पीटते तथा उसी स्त्री या पुरुष की लोहे की तपी हुई मूर्ति का आलिंगन करने के लिए विवश करते हैं। बहुत कष्ट। 13वां नरक है वज्र कंटक सालमली। इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति पशुओं के साथ व्यभिचार करता है उसे वज्र कंटक सालमली नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमल के वृक्ष में लटकाकर यमदूत नीचे की ओर खींचते हैं।